الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ انعام کی آیت 122 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں اس سے پیچھے یہ بیان ہوا یہ شرک بدعات کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے یہ بدعات مشرکانہ مذاہب میں شریعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں چنانچہ کچھ رسوم قائم کی جاتی ہیں جن کے تحت حلت و حرمت تک کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا کہ آپ شرک کی بھی صاف صاف تردید کر دیجئے اس لیے کہ یہی دین کی دعوت کا محور ہے اور ان بدعات کے بارے میں بھی واضح کر دیجئے کہ ان کے ساتھ کسی مصالحت کا کوئی سوال نہیں ہے اور پھر بڑی تحدید کے انداز میں بات یہاں ختم کی تھی کہ آپ متنبہ رہیں اگر آپ نے ان کی بات مان کر ادنا درجے میں بھی کوئی مداہنت اختیار کر لی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشرک ہو کر رہ جاؤ گے یہ تنبیہ یہ بتا رہی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں دونوں چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں ایک یہ کہ اصل حقیقت کے معاملے میں کوئی مداہنت کوئی مصالحت روا نہ رکھی جائے اور دوسرے یہ کہ اس اصل حقیقت کے نتائج میں یا اس کے ذرائع میں جو چیزیں پیش آتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا جائے یہ معاملہ اس طرح کا نازک معاملہ ہے کہ اس میں اگر دو قدم بھی اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو نتیجہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے یہ چیز ان جرائم میں یا ان گناہوں میں بڑی اہمیت کی حامل ہے جن کے ساتھ انسان کا چلنا اگلی منزلوں کی طرف کھینچ لے جانے کا باعث بنتا ہے شرک کے مراسم ایک فلسفے کے طور پر قبول کر لیے گئے رواداری کے انداز میں قبول کر لیے گئے دوسروں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے قبول کر لیے گئے تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ وہ تہذیب کا حصہ بنیں گے اگلی نسلوں تک منتقل ہوں گے ان کے بارے میں حساسیت کم ہوگی اور پھر صرف یہی نہیں کہ حقیقت لوٹ آئے گی بلکہ نئے نئے مظاہر و اشکال یہ نئی قوم خود اختیار کر لے گی اگر آپ غور کریں تو مسلمان قوم کی تاریخ پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جب رومیوں کے ساتھ ملے اور انہوں نے فلسفے کی سطح پر یا مراسم کی سطح پر مصالحت کا طریقہ اختیار کیا تو یہی نتیجہ نکلا مسلمانوں کو جب عجم سے واسطہ پڑا یا پھر اس کے بعد ہندوستان سے جس کا ہر ذرہ دیوتا ہے واسطہ پڑا تو وہاں بھی ایسی ادنا مداہنت برتنے کے یہی نتائج نکلے تو یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بتایا ہے کہ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ مِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ یعنی مسلمانوں اگر ان کا کہا مانو گے تو کچھ شک نہیں کہ تم بھی مشرک ہو کر رہ جاؤ گے یعنی اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا تو اس وجہ سے ان کی پرواہ نہ کرو ان کی پرواہ نہ کرو یعنی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو فلسفے یہ بیان کر رہے ہیں جن بدعات کی یہ حمایت میں کھڑے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بے تعلق کر لو اور اس معاملے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مضمون مقدر ہوا اس پر اب بات کو آگے بڑھا دیا اور فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا کیا جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا और उसको एक ऐसी रोशनी अता फरमाई जिसे वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है। उस शख्स के मानिंद हो जाएगा जिसका हाल ये है कि तारीकियों में पड़ा हुआ है। यानी ये सवाल सामने रख दिया। अब ये जो सवाल सामने रखा है ये असल में उसी पहली बहस से पैदा हुआ है। उस पहली बहस में एक तो इस चीज़ को समझ लेना चाहिए जो इरशाद फरमाई थी कि शयातीन अपने एजेंटों को इल्का कर रहे हैं कि वो इस मामले में भी तुमसे झगड़े। दूसरी बात ये फरमाई थी कि अगर इनका कहा मानोगे तो इसके नतीजे में तुम्हारे यहाँ भी शिर्क दर आएगा। इन दोनों पर जो दो नोट हैं वो सुन लीजिए। मैंने लिखा है यानी उसी तरह का गौगा बरपा करने की तरगीब दे रहे हैं जो इन लोगों ने अपनी करारदादा बाज़ हुरमतों की हिल्लत का सुनकर बरपा कर रखा है। शयातीन के एजेंट क्या इल्का कर रहे हैं ये एक प्रोपेगंडे का तूफ़ान उठा देते हैं और प्रोपेगंडे के इस तूफ़ान में ये बात बावर कराई जाती है कि देखा आपने ये हमारे अकाबिर को हमारे बुज़ुर्गों को हमारे आबा अजदाद को अहमक करार दे रहे हैं। ये कह रहे हैं उनसे गलती हो गई थी। तो ये सबसे बढ़कर दीन को समझने वाले आ गए हैं। पैगंबरों को इसी से वास्ता पड़ा है। और ये बात याद रखिए कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के यहाँ वास्ता नहीं पड़ा जिनके यहाँ मज़हबी रवायत कमज़ोर हो गई थी, जिनके यहाँ मज़हबी रवायत बहुत मनज़्ज़म थी, जैसे कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की कौम, यानी यहूद उलमा हैं, फजला हैं, उनकी किताबों के मुफस्सरीन हैं, एक अजीम तारीख अपने पीछे रखते हैं। उसमें आकर जब सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने इस तरह की बिदात पर तनकीद शुरू की या गलती बताना शुरू की या वो चीज़ें जो दीन बना ली गई थीं उनके बारे में ये बताना शुरू किया कि दीन में इनकी कोई हकीकत नहीं है, तो ऐसा ही गौगा बरपा हुआ। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों में मबूस हुए वो भी एक मज़हबी गिरोह था। सैयदना इस्माईल की औलाद, काबे के पुरोहित, उनको अरब में मज़हबी पेशवा की हैसियत हासिल थी, उनके यहाँ भी मज़हबी रवायात थी, उसमें भी बिल्कुल यही हुआ। यानी उसी तरह का गौगा बरपा करने की तरगीब दे रहे हैं जो इन लोगों ने अपनी करारदादा बाज हुरमतों की हिल्लत का सुनकर बरपा कर रखा है। सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपने किसी गलती की वजह से, किसी गलत फहमी की वजह से या किसी बुनियादी फ़लसफ़े पर क्यास करके कुछ चीज़ों को हराम करार दे दिया। ये भी हराम है, वो भी हराम है, ये भी नाजायज़ है। अब जब खुदा का बंदा उठा और उसने अल्लाह की तरफ से रोशनी पाकर ये बताया कि ये हुरमतें जिस तरह बयान की जा रही हैं ऐसे नहीं हैं, इनकी कोई असल नहीं है, इनकी कोई बुनियाद नहीं है, या इनको बयान करने में ये गलती हो रही है, या इनमें क्यास की बुनियादें दुरुस्त नहीं हैं, या इनमें जिन चीज़ों से इस्तदलाल किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है, जैसे ही ये बात की जाएगी तो उसमें प्रोपेगंडे का तूफान ये उठता है कि देखिए ये तो बहुत आसान कर दिया ना इन्होंने मामला, हर हराम चीज़ को हलाल करार देते चले जा रहे हैं। यानी वो चंद बातें जिन पर बात हो रही होगी सिर्फ वो ज़ेरे बहस नहीं रहेंगी, यही उसलूब इख्तियार कर लिया जाएगा। तो ये गौगा बरपा करेंगे। चुनाचे अपने एजेंटों को बता रहे हैं कि लो अब ये नया दीन लेकर आने वाले तुम्हारे सब बाप दादों को हराम खोर करार दे रहे हैं। यानी जब ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें तुमने की हैं ये तो ठीक नहीं थी, ये नाजायज़ काम थे, या ये बता रहे हैं कि ये जायज़ काम थे, तो गोया ये बराह रास्त तुम्हारे आबाओ अजदाद पर हमलावर हो रहे हैं। तुम्हारे सब बाप दादों को हराम खोर करार दे रहे हैं जो नजर और चढ़ावे के बाद जानवरों को अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़िबा करते और उनका गोश्त खाते रहे हैं। यानी वो जानवर जो नज़र के तौर पर बैतुल्लाह में पेश किए जाते, नज़र के तौर पर बुतों के स्थानों पर पेश किए जाते और अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़िबा किए जाते, उनका गोश्त खाते रहे हैं। आगे आयत 138 में मुशरिकीन के इस अकीदे का जिक्र हुआ है कि वो इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लेना जायज़ नहीं समझते थे। यानी उनके यहाँ जिस तरह ये सूरत हाल थी कि गैर अल्लाह का नाम लेते थे, इसी तरह अल्लाह के नाम के साथ बाज दूसरों का नाम लेते जानवरों को ज़िबा करते वक्त, बाज जानवरों के बारे में ये अकीदा पैदा कर लिया गया था कि ये फलां बुत की नज़र है या ये फलां स्थान की नज़र है, इसलिए इन पर अल्लाह का नाम लेना जायज़ नहीं है। तो कुरान मजीद ने यहाँ ये बताया कि जैसे ही इन बिदअतों पर तनकीद की जाएगी और जैसे ही ये बताया जाएगा कि ये सब खानाजाद फतवे हैं, तो इसके नतीजे में ये अपने एजेंटों को इल्का करके गौगा बरपा कर देंगे। और दूसरी बात की मैंने वजाहत की, लेकिन उस पर लिखा है मैंने कि यानी एक मरतबा इनके तवहमात से समझौता कर लोगे तो आहिस्ता आहिस्ता शिर्क के दूसरे मज़ाहिर भी तुम्हारे इल्म व अकीदा में दर आएंगे। यानी ज़रा सा समझौता किया, कुछ बात मानी, एक आध बिदत के साथ कुछ रवादारी कायम की, नतीजा ये निकलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बिलाखर मुशरिक होकर रह जाओगे। यानी मुशरिक होने का जो अमल है वो बाज़ औक़ात अकीदे में होता है, बाज़ औक़ात मज़ाहिर व अशकाल में होता है। इब्तिदा होने के बाद फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं कि जो इसी पर्दे में इख्तियार कर ली जाएंगी। तो ये दो बातें जो पीछे कही थी उनकी वजाहत कर दी। अब उस पर मैंने अर्ज़ किया कि ये बात उठाई है कि इनकी परवाह ना करो, और फिर ये सवाल किया है कि क्या जो मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया और उसको एक ऐसी रोशनी अता फरमाई जिसे वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है। यानी एक तरफ एक शख्स है, उसको ज़िंदगी अता हुई, उसके यहाँ भी कुछ नहीं था, गोया वो मुर्दा था, हमने उसे ज़िंदा किया, रोशनी अता फरमाई, अब वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है। और दूसरी जानेब वो शख्स है, उस शख्स के मानंद हो जाएगा जिसका हाल ये है कि तारीकियों में पड़ा हुआ है। कमम मसलहू फिज़्ज़ुलमात लैसा बिखारिज मिन्हा, किसी तरह से उनसे निकलने वाला नहीं है। यानी क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? इस पर अलबयान का नोट है, ये ईमान वालों की तमसील है। यानी ये जो फरमाया कि मुर्दा थे ज़िंदा कर दिए, ज़ाहिर है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग मज़हबी मामले में गोया के अपना सब कुछ खो बैठे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, कुरान मजीद ने उसमें दो बड़े गिरोहों तक की तस्वीर खींच दी है सूरह फातिहा में, कि एक तरफ वो हैं कि ऐसी सरकशी में मुब्तला हुए कि खुदा के गज़ब के मुस्तक हो गए, और दूसरी तरफ वो हैं कि ऐसी भूल भुलैया में उलझे कि अब उनके यहाँ गुमराही के सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो ये सूरत हाल तो अहले किताब की थी, इस पर क्यास किया जा सकता है कि बनी इस्माइल का क्या हाल होगा। तो उसके मुकाबिल में ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने फिर ईमान कबूल किया तो गोया मुर्दा थे, खुदा ने उनको ज़िंदा कर दिया। वो हकीकत से नाशना थे, उन्हें हकीकत से आगाही बख्श दी, वो तारीकी में थे, अल्लाह ताला उनको रोशनी में ले आया। ये ईमान वालों की तमसील है। मतलब ये है कि जिन पर कुफ्र और जहालत की मौत तारी थी, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान की ज़िंदगी बख्शी। यानी यहाँ जो मुर्दा थे ज़िंदा कर दिया, तो ये गोया एक तरह का मजाजी उसलूब है, मुर्दा इस एतबार से कि ईमान नहीं था, ईमान के हकायक से वाकफियत नहीं थी, हर तरफ खलजान और तरद्दुद था, बात बाजे नहीं थी, लगता था बंद दरवाजे हैं। इसकी बाज तस्वीरें हैं जो अरब जाहिली की तारीख में मिलती हैं कि बाज सलीमुत्तबा लोग भी जो बुतप्रस्ती में मुब्तला नहीं थे, काबे की दीवार से टेक लगा के बैठ जाते और ये कहते कि परवरदिगार ये सब तो गलत है, साफ नज़र आ रहा है कि गलत है, ज़मीर कहता है कि गलत है, फितरत कहती है कि गलत है, अकल शहादत देती है कि गलत है, लेकिन तेरी सीधी राह कौन सी है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जानना मुश्किल हो रहा है। तो ज़ाहिर है कि ये वो हालत है जिसको बयान किया है कि मुर्दा थे, ईमान की ज़िंदगी बख्शी, और उनकी रहनुमाई के लिए एक ऐसी किताब उन्हें अता फरमाई जिसकी रोशनी में अब वो हक व बातिल को अलग अलग देख सकते। ये कहा ना उसको एक रोशनी अता फरमाई, वजालना लहू नूर यमशी बही फिन नास, अब वो उस रोशनी को लेकर जैसे आदमी के हाथ में शम्मा हो लोगों के दरमियान चल रहे हैं। यानी ना सिर्फ ये कि उनको रोशनी मिली है, बल्कि ऐसी रोशनी मिली है कि वो लोगों के लिए भी तारीकियों को दूर करने का बायस बन सकती है, जिसकी रोशनी में अब वो हक व बातिल को अलग अलग देख सकते, हक के रास्ते पर चल सकते और दूसरों की भी यही राह दिखा सकते, ऐसी रोशनी उनको मिली है। तो ये कुरान मजीद हम मुसलमानों के लिए भी ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है जो उसने हमें अता फरमाई। यानी आदमी अगर इल्म की दुनिया में खड़ा हो, एक तरफ उसके सामने फ़लसफ़े की पूरी तारीख हो, दूसरी जानब उसके सामने सूफियाना मज़ाहिब की तारीख हो, तीसरी जानब अवहाम व जुनून से पैदा होने वाले नुक्ता नज़र की तारीख हो, उसमें जब वो कुरान मजीद को खड़ा होकर पढ़ता है तो ये मालूम होता है कि जैसे आफ्ताब निकल आया, तारीकियों में आफ्ताब निकल आया है, हर चीज़ बिल्कुल वाज़े, हर चीज़ बिल्कुल अपने मकसद से जुड़ी हुई, यानी कहीं इबहाम नहीं, कहीं तरद्दुद नहीं, एक वाज़े नुक्ता नज़र। ज़ाते खुदाबंदी ये है, उसके सिफात ये हैं, उसके सुनन ये हैं, वो तुम्हारे साथ ऐसे मामला करता है, ये दुनिया ये है, तुम्हारी पैदाइश इस तरह है, इसके नतायज ये निकलने वाले हैं, ये ज़िंदगी इस तरह है, इस ज़िंदगी की हकीकत ये है, इसका मकसद ये है। एक एक सवाल जिसका जवाब पाने का कोई रास्ता इंसान को नहीं मिल सका। यानी अगर आप फ़लसफ़े और सूफियाना मज़ाहिब की तारीख से वाकिफ़ हैं तो ये हकीकत है कि किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं मिल सका कि जिसमें यकीन के मुकाम पर खड़ा होकर आदमी कह सके कि हाँ बात यूं है। यानी क्या शऊर असल है? बहुत से फ़लसफ़ी बयान करेंगे लेकिन आखिरी नतीजा क्या है? क्या मादा असल है? बहुत से लोग इस्तदलाल करेंगे, क्या इस पर इत्तेफाक हो गया है? इंसान के अखलाकी एहसास की बुनियाद क्या है? तजुर्बा, मामलात, ज़िंदगी का सफ़र, फ़िक्री और ज़हनी इर्तका, या अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म? इंसान के इल्म की नौइयत क्या है? अंदर है या बाहर से पैदा होता है और तजुर्बात और मुशाहिदात के नतीजे में आगे बढ़ता है? ये जितने बड़े बड़े सवालात हैं अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि इनके जवाब देने की लोगों ने कोशिश नहीं की, इनके जवाब पाना नागुज़ीर है। इनका जवाब पाए बगैर इंसान की अक्ल मुतमिन नहीं हो सकती। इंसानों में से जो ज़हीन लोग हैं नागुज़ीर है कि वह इनका जवाब पाएँ, उसके बाद ही वो ज़िंदगी को एक रब्त और निज़ाम के साथ देख सकते हैं। लेकिन क्या मिल गया, क्या पा लिया? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुरान मजीद है कि जिसको आप जब खोलते हैं तो मालूम होता है कि वो इन तमाम सवालों के जवाब में, ऐसा नहीं है कि कुछ फ़लसफियाना किस्म के मबाइस सामने रख देता है आपके कि आप उसकी बुनियाद पर राय कायम कर लें। नहीं, उसमें खुदा बोलता है, नज़र आता है कि आसमान का परवरदिगार है कि जो इन मामलात में एक वाज़े हुक्म दे रहा है, वाज़े हिदायत दे रहा है, वाज़े फैसला सुना रहा है। उसका वर्डिक्ट, उसका फतवा है कि जिसके नतीजे में रोशनी रोशनी फैलती चली जाती। तो ये उसकी तमसील की थी कि अब अमन का न मई तनफा ये इना हो अजालना लहू नूर यमशी बही फिन्नास कबम मसलहू फिजुलमात लैसा बिखारिज मिनहा कज़ालिक ज़ुय्यिना लिलकाफिरीना मा कानू यअमलून। तुम इनकी परवाह ना करो, ये मजमून मुकद्दर है, मैंने इसको खोल दिया। क्या जो मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदा कर दिया और उसको एक ऐसी रोशनी अता फरमाई जिसे वो लोगों के दरमियान लेकर चल रहा है, उस शख्स के मानंद हो जाएगा जिसका हाल ये है कि तारीकियों में पड़ा हुआ है। तारीकियों में पड़ा हुआ है यानी उधर रोशनी क्या थी? किताब, ईमान, हकायक का सही इल्म जो उस किताब के ज़रिए से, उस किताब को लाने वाले पैगम्बर के ज़रिए से मिल गया। तारीकियाँ, इससे मुराद मैंने लिखा है जुनून व अवहाम और ख्वाहिशात व बिदात की वो तारीकियाँ हैं जिनका जिक्र ऊपर हुआ है। पीछे जो तारीकियाँ बयान हुई हैं ये उन्हीं को यहाँ ज़ुलुमात कहा है। यानी जिस वक्त आदमी अपने अकीदे और अपने नुक्ता नज़र की बुनियाद जुनून पर रखता है, गुमानों पर रखता है, क्यासात पर रखता है, अवहाम पर रखता है, और फिर उन्हीं जुनूनों अवहाम को पस मंज़र में रख कर अपनी ख्वाहिशात को शरीयत और मरासिम की सूरत दे देता है, कानून की सूरत दे देता है, तो इसके नतीजे में जो तारीकियाँ पैदा होती हैं उनको यहाँ फिज़ुलमात से ताबीर किया है। लैसा बिखारिज मिनहा, उनसे निकलने की कोई राह नहीं होती। तो इरशाद फरमाया कि ज़ुय्यिन लिल का कज़ाल का ज़ुय्यिन लिल काफिरीना मा कानू यअमलून, इन मुनकरों के आमाल इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए। यानी इन लोगों ने जब ये तरीका इख्तियार कर लिया तो इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि जुल्मतें ही इनके लिए रोशनी बन गई। इन पर भी अलबयान के दो नोट हैं। ये पहली बात जो फरमाई कि किसी तरह इनसे निकलने वाला नहीं है, इस पर मैंने लिखा है ये तमसील अहले ईमान की हौसला अफजाई के लिए बयान की गई। मुद्दा ये है कि उन्हें जो कुछ अता हुआ है, यानी ये कुरान, ये पैगंबर की हिदायत, उन्हें जो कुछ अता हुआ है उसे वो कोई मामूली चीज़ ना समझें, उसकी कदर करें और उसका ज़िंदगी बख्श पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं और उन लोगों की खराफात पर कान न धरें जो अपने करतूतों की बिना पर अंधेरों में ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिए गए। ये मतलब है इस बात का कि किसी तरह ये तारीकियों में पड़े हुए हैं और तुम रोशनी में आ गए हो। तो तो गोया ये बताया कि जब ये बराबर नहीं हो सकते तो रोशनी वालों अपनी रोशनी की कदर करो, ये देखो क्या नेमत तुमको अता हुई है। और फिर उसके बाद ये कहा कि ये तारीकियाँ कैसी हैं, यानी कुफ्र व जहालत की जिस तारीकी को उन्होंने अपने लिए इख्तियार किया है, खुदा ने वही तारीकी उनके लिए पसंदीदा बना दी है। यानी नतीजा क्या निकला है कि एक तारीकी को उन्होंने इख्तियार किया और उस तारीकी को अब अपने लिए महबूब बना बैठे हैं। इन मुनकरों के आमाल इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं, यानी आमाल हैं जिनको तारीकी से ताबीर किया है, अकायद हैं जिनको तारीकी से ताबीर किया है, और फिर ये बताया है कि तारीकी को रोशनी समझ बैठे हैं। यानी इंसान के साथ मामला ये होता है कि जिस वक्त वो हक से अपने आप को महरूम कर लेता है और इस तरह के मरासिम इख्तियार कर लेता है, तो फिर यही चीज़ें उसके लिए बहुत महबूब हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब लोग खुदा का आस्ताना छोड़ देते हैं और दूसरे आस्तानों को अपनी अकीदत का मरकज़ बना लेते हैं, दूसरे आस्ताने उनके लिए तजल्लियात के मरकज़ बन जाते हैं, अकीदत के मरकज़ बन जाते हैं, उनकी उम्मीदें उनसे मुतल्लक होती हैं, वो दुआएं वहाँ करने के लिए जाते हैं, वो माथा वहाँ टेकते हैं, तो फिर होता क्या है, इसमें उनको बड़ी लज्जत मिलती है, यही चीज़ उनके लिए बड़ी महबूब हो जाती है, इसी को वो बहुत फ़ख्र के साथ बयान करते हैं। इन्हीं दरबारों पर और इन्हीं बारगाहों में और इन्हीं स्थानों पर और इन्हीं बुतों के सामने और इन्हीं देवी देवताओं को वो गोया अपनी अकीदतों का मरकज़ बना लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि वो इस बात पर शर्म महसूस करते कि वो इंसानियत को किन चीज़ों के सामने झुका रहे हैं, वो अपने ही जैसे इंसानों को या अपने ही तसव्वुरात को या अपने ही मज़ूमात को क्या हैसियत दे रहे हैं, वो इन चीज़ों को किसके मुकाबले में पेश कर रहे हैं, यानी उनकी दुआएं, उनकी उम्मीदें, उनकी आरजुएं और उनकी तमन्नाएं किन चीज़ों से वाबस्ता हो गई हैं। उनको तो ये शरफ़ हासिल हुआ था कि वो एक खुदावंद के सामने झुके, उनकी पेशानी सिर्फ उन उसके सामने ज़मीन पर आए, तो ये उन्होंने अपने आप को किस जिल्लत में डाल लिया। इस तारीकी में होने के बावजूद वो इसी को रोशनी समझते हैं। तो ये फरमाया कि कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल्काफ़िरीना मा कानू यअमलून, इन मुनकरों के आमाल इनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं। यानी पैगंबर इनको तौहीद की दावत दे रहे हैं, मान नहीं रहे, पैगंबर इनको शिर्क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सुनकर नहीं दे रहे। तो नतीजा क्या है कि वो चीज़ के जिसकी गलती तवज्जो दिलाते ही वाजे होनी चाहिए थी, वही चीज़ है कि जो इनके लिए बहुत बड़ी नेमत बन गई है, इनके लिए बहुत बड़ी लज्जत का सामान बन गई है। वह कज़ालिका जालना फ़ी कुल्ले करियतिन नकाबिरा मुजरमीहा ले यमकुरु फीहा, इरशाद फरमाया हर बस्ती में उसके बड़े बड़े मुजरिमों को हमने इसी तरह ढील दी। किस लिए ढील दी? कि उसमें अपनी चालें चलें। इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि हमने उनके साथ ये मामला किया, और उसके लिए जो फेल आया है वो जालना है, असल में लफ्ज जालना आया है, ये यहाँ अब हलना के मफहूम में है, हमने तर्जुमा इसी के लिहाज से किया है। ये मैंने लिखा है ताकि तालिबे इल्मों को तवज्जो हो कि यहाँ अगरचे फेल तो जाला इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये दर हकीकत इमहाल के मज़मून को अपने अंदर लिए हुए है। यानी मतलब ये है कि हमने क्या किया, जब मुजरिमों ने यह फैसला कर लिया कि वो मुजरिमाना ज़िंदगी बसर करेंगे। ये कौन मुजरिम है? यानी ये वो लोग हैं कि जो अकायद के बाब में, अमाल के बाब में इन्हीं बिदात के अलमबरदार बनकर होकर माशरे में खड़े हो गए। उन्होंने जो दीन बनाया था, जिसके वो पेशवा बने थे, वो उसके मुबल्लिग बन गए। उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपने बारगाहें उस्तवार कर लीं। जब ये हो गया तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि जो चालें उन्होंने चलनी थी, जिन बिदात को उन्होंने खुशमा तसव्वुरात में बदलना था, उन चालों को आमतुन नास के सामने पेश करके उनको अपने दाम में लाना था, तो हम चाहते तो पकड़ लेते, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको ढील दे दी। और ढील दे दी कि वो ये चालें जहाँ तक चल सकते हैं चल लें। वो ख्याल कर रहे थे कि इस तरह वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, इस तरह वो अपनी दुकानें चला रहे हैं। उनको इसका एहसास नहीं था कि वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशुरून, वो ये चालें अपने साथ ही चलते थे मगर उन्हें इसका एहसास नहीं था। यानी वो खुद तबाही के गड़े में गिर रहे होते हैं, वो समझ ये रहे होते हैं कि वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं लेकिन वो खुद धोखा खा रहे होते हैं। मैंने लिखा है मतलब ये है कि वो ये चालें बगैर हक के खिलाफ मगर हकीकत में अपने खिलाफ ही चलते थे। इसके लिए जो अल्फाज असल में आए हैं उनमें फेले नाकिस अरबियत के कायदे से महजूफ है। कुरान मजीद में बाज़ औक़ात अरबियत के लिहाज से बाज़ चीज़ें तवज्जो दिलाने की होती हैं तालिबे इल्मों को, तो यहाँ पर भी एक फेले नाकिस हस्फ हो गया है। तर्जुमे में उसका लिहाज रखते हुए उसको बयान करना चाहिए। इस तरह के महजूफात कलाम को बिल्कुल मुताबिक हाल करते चले जाते हैं। तो इरशाद फरमाया कि वो ये चालें अपने साथ ही चलते थे लेकिन वमा यशुरून, उन्हें इसका शऊर नहीं था। चुनाचे आगे फरमाया कि होता क्या था, वाइजा जा तुम आयतुन, वो जब उनके सामने कोई आयत आती, यानी अब कुरान आ गया, रोशनी आ गई, अल्लाह का नूर आ गया, तो जब कोई आयत सामने आती तो कहते थे वाइजा जा तुम आयतुन कालू लन नूमिन हत्ता नूत मिसलमा ऊती रसूलुल्लाह, हम हरगिज़ न मानेंगे जब तक वही हमको ना दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। यानी अब देखिए कि आयत आती थी तो आयत आके क्या करती थी, किसी हकीकत को वाज़े करती थी, किसी गलती पर मुतनब्बे करती थी, खुदा का पैगाम लेके आती थी। तो इल्म व अकल का तकाजा तो ये था कि उसको उसके मेरिट पर कबूल किया जाए, लेकिन अब देखिए कि क्या तरीका इख्तियार करते थे कि ये दुरुस्त होगा, ये बात ठीक होगी, जैसे ये बयान करते हैं ऐसे ही होगा, लेकिन इनका इंतखाब क्यों किया गया है ये बात हम तक पहुंचाने के लिए। हम तो उसी वक्त मानेंगे कि जैसे इनको आसमान से ये खबर दी गई है हमें भी दी जाए, हमें भी बराह रास्त बताया जाए। तो ये एक चाल की फिर मिसाल दी है जो वो चलते थे, प्रोपेगंडा करना है, बात को इस जाविये से पेश करना है कि मुखातबीन उसके नतीजे में दावत से मुतनफ़िर हो जाए, पैगंबर से गुरेज करें, बात सुनने से इनकार करें, या कम से कम तजब्जुबी में मुबतला होकर खड़े हो जाए। तो ये मिसाल दी इसकी, मैंने इस पर लिखा है ये उन चालों की एक मिसाल है जिनका जिक्र हुआ है। यानी पीछे बयान किया ना कि हमने बड़े बड़े मुजरमों को मोहलत दे रखी है, ढील दे रखी है कि वो ये करें, चालें चलें। ये तबसरा कर दिया था कि वो चालें ये अपने साथ ही चलते थे, यानी ऐसा नहीं है कि वो चालें उनके काम आई, आखिर में नतीजा उन्हीं के खिलाफ निकला, लेकिन बहरहाल चलते थे, उन्हें इसका एहसास नहीं था। आप ये बयान किया है कि इसका जहूर कैसे होता है, तो इरशाद फरमाया कि ये चालें ऐसे चलते थे कि एक आयत आ गई तो उसके जवाब में ये उज़र पेश कर दिया। उस्ताद इमाम लिखते हैं ठीक यही बात जैसा कि कुरान में तफसील से बयान हुई, कुरैश के अकाबिर कहते थे। ये कुरान ने माजी का हवाला दिया है, लेकिन कुरैश के अकाबिर, कुरैश के बड़े लोग जिनका ऊपर जिक्र हुआ है ना, मुख्तलिफ कौमों के अकाबिर मुजरमिया, तो कुरैश में जो अकाबिर थे वो भी बिल्कुल ऐसी ही बात करते थे। उनको भी वही घुमंड था जो उनके पेशरव मुस्तकबरीन और मुकज्जबीन अंबिया को था, यानी उनसे पहली कौमों में, उनके पेशरव उनसे पहली कौमों में जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तकजीब करने वाले, उनको झुठलाने वाले आए, या अल्लाह की दावत के मुकाबले में, पैगंबरों की दावत के मुकाबले में इस्तकबार इख्तियार करने वाले आए, उनका घुमंड भी वही था कि अगर खुदा किसी को रिसालत ही देने वाला था तो क्या इस ताज के लिए उसको इन्हीं का सर मौजू नजर आया, इन्हीं का सर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह तंस करते, इस तरह तारीज करते, आखिर मक्के या ताइफ के किसी सरदार पर उसकी नज़र क्यों ना पड़ी। यानी अल्लाह ताला ने फैसला किया, चलो मान लेते हैं कि वो दुनिया की हिदायत के लिए, या अहले अरब की हिदायत के लिए, या हम कुरैश मक्का की हिदायत के लिए, या बनी इस्माइल की हिदायत के लिए कोई किताब नाजिल करना चाहता है, तो यहाँ क्या उतबा नज़र नहीं आया, शैबा नज़र नहीं आया, अबुल हकम नज़र नहीं आया, अबू सुफियान नज़र नहीं आए, ये बड़े बड़े सरदार मक्का के, ताइफ के, ये बैने ही कुरान मजीद में ये बात बयान की है। सूरह ज़ुख़रुफ़ में लौला नुज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम, ये हमारी दो बस्तियाँ हैं मक्का और ताइफ, हमारे बड़े बड़े सरदार यहाँ रहते हैं, इनमें से किसी बड़े आदमी के ऊपर ये कुरान क्यों नाजिल नहीं हुआ। مکہ یا طائف کے کسی سردار پر اس کی نظر کیوں نہ پڑی؟ ظاہر ہے کہ یہ بات جو وہ کہتے تھے تو محض چال بازی کے طور پر کہتے تھے، اس سے مقصود ان کا محض اپنی انانیت اور خود فریبی کے لیے ایک پردہ فراہم کرنا اور اپنے عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا تھا۔ سادہ لو عوام دنیوی اسباب و وسائل کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ جن کو دنیا میں بڑا دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بھی یہی بڑے ہوں گے۔ اس ذہن کے لوگ آسانی سے اس قسم کے چکموں میں آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے قرآن نے اس بات کو مکر سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے، یہ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں، تو چلیے مان لیجئے کہ یہ بات واضح ہو گئی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس سے پہلے، جن کو ہم بڑی حیثیت دیتے رہے ہیں، یہ ان پر کیوں واضح نہیں ہوئی؟ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کم سے کم عوام کے لیے ایک بڑا پردہ بن جاتی ہے، اور اس طرح یہ چال اکثر و بیشتر کامیاب رہتی ہے۔ یہ تدبیر ہے جو اختیار کی جاتی ہے، کیونکہ سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ ایک بچے نے بھی اگر ایک بات کہی ہے اور بات معقول ہے تو قبول کر لی جائے، اس کی تردید کرنی ہے، اس کی تردید کرنی ہے تو اس کے استدلال کو موضوع بنایا جائے۔ یعنی اگر تو کسی نے ایک بات کہہ دی ہے اور ایسے ہی کہہ دی ہے تو نظر انداز کر دیجئے، لیکن اگر وہ دلیل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، آپ اس کو اس زمانے میں لے آئیے، وہ بتا رہا ہے یہ اللہ کی کتاب میں ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھیے اس کو سمجھنے میں یہ غلطی لگی ہے، اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل غلط کہہ رہا ہو، لیکن اس کے جواب میں یہ کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں آپ آئیے اور آ کر یہ کہیے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور سننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ غلطی بات میں ہوتی ہے، اس کے جواب میں یہ کوئی استدلال ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی، ہمارے اکابر کے اوپر یہ بات واضح کیوں نہیں ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں بات کے سمجھ میں آنے کا مسئلہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی حقیقت کے واضح ہو جانے کا مسئلہ ہے، اور اس وقت اللہ کی روشنی ملنے کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے یہاں کے بڑے دانشور ہیں، ہمارے یہاں کے اکابر ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم نے ان کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے، انہی کے ساتھ ہمارا معاشرہ قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ قرآن نازل کرنا تھا اور یہ حق واضح کرنا تھا اور کسی غلطی پر تنبیہ کرنی تھی تو ان پر انتخاب ہوتا، ان کے بتانے کے بعد کون انکار کرتا؟ جدوجہد کی ضرورت ان کو پیش آتی، ان میں سے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا ہوتا، ہمارے اکابر کے سر پر یہ تاج رکھ دیا ہوتا تو وہ بیان کرتے، ہم پہلے ہی ان کی پیروی کر رہے ہیں، سنتے، مانتے، سر تسلیم خم کرتے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہمارے اندر کے ایک شخص کو جس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا ہے، تو وہاں یہ استدلال اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ استدلال کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، ذرا بتائیے تو صحیح، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ ہمارے مدارس، یہ ہماری خانقاہیں، یہ ہمارے پیشوا، یہ ہمارے مشائخ، یہ ہمارے بڑے لوگ، ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نئی بات کہنے والا یا کسی بات کی تردید کرنے والا یا کسی بات کی غلطی واضح کرنا ہی کرنے والا ہی غلطی پر ہو، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو سامنے رکھ کر یہ بتائیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے، یہ تنقید بے بنیاد ہے، اس میں جس غلطی کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کو سمجھنے میں خود ان کو غلطی لگ رہی ہے۔ یہ شائستہ اور مہذب طریقہ ہوگا جس سے علمی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے مکالمے کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس میں کچھ سنا جاتا ہے، کچھ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر جواب میں بنیاد وہ اختیار کر لی جائے تو پھر اس کے بعد بات کرنی ممکن نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ سادہ لو عوام کو دھوکے میں ڈال دینا یہ بالکل ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے لیے یہ استدلال بڑا استدلال بن جاتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن کو نازل ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کو پیغمبری کے لیے منتخب کرنا تھا، تو کتنا آسان معاملہ ہوتا کہ ہمارے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا جاتا، ہم پہلے ہی ان کی بات مان رہے تھے۔ وہ اگر یہ کہتے کہ اٹھاؤ یہ سارے کے سارے بت، مجھے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اب کعبے میں نہیں ہوں گے، تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے، لیکن وہ تو اسی جگہ کھڑے ہیں، ہمارے اکابر وہی ہیں جن کے پیچھے ہم چل رہے تھے، वो वही लोग हैं, और हमारे अंदर के एक आम शख्स को उठाया गया है और उठाकर उस पर अल्लाह की किताब नाजिल हो गई। तो इजा जात हम आयतुन कालू लन्नु मिना हत्ता नूत मिसलमा ऊती रसूलुल्लाह, जब उनके सामने कोई आयत आती तो कहते थे हम हरगिज न मानेंगे जब तक वही हमको न दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया है। अल्लाह आलम हैसो यजल रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत का मनसब किसे अता फरमाए। ये बड़ा सख्त जुमला है, यानी जब ये कहा तो जवाब दिया उसका, अल्लाह आलम हैसो यजल रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत का मनसब किसे अता फरमाए। मैंने लिखा है ये जवाब अगरचे लफ्जन सख्त नहीं है लेकिन मानी के लिहाज से देखा जाए तो नहायत सख्त है। उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही ने वजाहत फरमाई है, वो लिखते हैं मतलब यह है कि यह मनसब रिसालत ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका अहल हर कसो नाकिस बन जाए। यानी असल में तो कुरान मजीद को यह कहना था कि अहम को ये हैं जिनके सर पर यह ताज रखना था, लेकिन जाहिर है कि इससे जज्बात भड़कते, ये नहीं कहा बल्कि उसलूब ये इख्तियार किया कि अल्लाह बेहतर जानता है, उसने फैसला करना था कर दिया उसने, लेकिन इसके अंदर जो सख्ती छुपी हुई है उसको खोला है उस्ताद इमाम ने। मतलब ये है कि ये मनसब रसालत ऐसी चीज़ नहीं है जिसका अहल हर कसो नाकिस बन जाए, ये अल्लाह ही खूब जानता है कि ये ताज वो किसके सर पर रखे, इसका फैसला अल्लाह करता है। ये अल्लाह ही खूब जानता है कि वो ये ताज वो किसके सर पर रखे, ये मखमल और जरपफ्त की झूल नहीं है जो बसा औकात गधों पर भी नजर आ जाती है। यानी कहने को तो बाद शौकीन लोग अपने गधों पर भी झूल डालने के लिए कमखाब और रेशम ले आते हैं, ये मखमल और जरबफ्त की झूल नहीं है जो बसा औकात गधों पर भी नजर आ जाती है, बल्कि ये खिलत इलाही और तशरीफ आसमानी है जो उन्हीं को नसीब होती है जिनका इंतखाब अल्लाह ताला फरमाए। यानी ये ताज मामूली ताज नहीं है, ये कोई दुनियावी चीज़ नहीं है। हक का मिल जाना, सही बात का वाज़े हो जाना, किसी बड़ी हकीकत का खुल जाना, अल्लाह की रोशनी मिल जाना, और जब पैगंबर आते थे तो अल्लाह की किताब अल्लाह की वही, ये कोई मामूली चीज़ है? तो अल्लाह बेहतर जानता है। यानी तुम समझते हो कि अल्लाह ताला ने ये फैसला ऐसे ही कर दिया है, वो जानता है कि वो क्या हस्ती है, वो क्या शख्सियत है, तुम अपने पैमानों से देख रहे हो, तुम्हारे बड़े लोगों को बड़ा जानने के अपने मेयारात हैं, अल्लाह के मेयारात और हैं, वही फैसला करता है कि ये ताज उसने किसके सर पर रखना है और उसने ठीक रखा है। ये पूरी बात गोया इसके अंदर मुजमर है, अल्लाह बेहतर जानता है कि अपनी रिसालत का मनसब किसे अता फरमाए। सयुसीबुल्लज़ीन आजरमू सगारुन इंदल्ला वअज़ाबुन शदीदुम बिमा कानू यमकुरून। क्या कहने हैं इसके? इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हाँ ये मुजरिम अनकरीब अपनी मक्कारियों की पादाश में जिल्लत से और सख्त अजाब से दोचार हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ जुर्म क्या बयान किया है, मक्कारियाँ, यानी इन लोगों ने चालें चली हैं, ये लोगों को बरगश्ता करने के लिए इस तरह के इस्तदलाल घड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें बयान कर रहे हैं, ये फरमाया उसके ऊपर। और फिर उसी बात की तरफ लौटिए कि कितनी सख्ती के साथ ये कहा था कि अल्लाह बेहतर जानता है। इससे मज़ीद ये मालूम हुआ, मैंने लिखा है कि अल्लाह ताला इस मनसब के लिए मुंतखब भी उन्हीं को फरमाता है जो उस्ताद इमाम के अल्फाज में अपनी सलाहियतों और खूबियों के लिहाज से नौ इंसानी के गुले सरसब्ज नखले फितरत के बेहतरीन समर और कमाल इंसानियत का मज़र अतम होते हैं। यानी जिनको पैगंबरों की हैसियत से मुंतखब किया जाता है वो नौ इंसानी के गुले सरसब्ज होते हैं। यानी नौ इंसानी में लीडर हैं, रहनुमा हैं, दौलतमंद हैं, साहबे इक्तदार हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये फूलों की इस टोकरी में सबसे बड़ा और सबसे नुमायाँ फूल हो। गुले सरसब्ज कुछ और लोग होते हैं, बाज़ औक़ात उन पर निगाह भी नहीं पड़ रही होती। इंसान को जो फितरत दी गई है उस फितरत के ऊपर پھل آتا ہے. یہ نخل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں. انسانیت اپنے اندر کمالات کے نصب و لین رکھتی ہے, یہ اس کمال انسانیت کا مظہر اتم ہوتے ہیں. تو یہ اوصاف و صفات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھتے اور پھر ان کا انتخاب کرتے ہیں, اور جو لوگ ان کے مقابلے میں یہ اعتراض کرتے اور یہ چالیں چلتے, فرمایا سا یصیب الذین اجرموا الصغار, اللہ کے ہاں یہ مجرم ان قریب اپنی مکاریوں کی پاداش میں ذلت سے, صغار عند اللہ و عذاب شدید, اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. سو یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. فمن یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اب ظاہر ہے کہ اس میں جب یہ کہا کہ سو, تو اس کے بعد ایک مقدر مفہوم ہے کہ یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. جب یہ چالیں چل رہے ہیں, جب انہوں نے استدلال کا راستہ چھوڑ دیا ہے, جب یہ بات کو اس طرح نہیں سن رہے جس طرح سننی ہے, تو اب یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے, اور اس کا وہ قانون قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. یہ اس لیے ہر جگہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اللہ چاہتا ہے تو اس کا یہ چاہنا علل ٹپ ہے. نہیں, اس کا یہ چاہنا کچھ قاعدوں پر, کچھ سنن پر, کچھ قوانین پر مبنی ہے. تو میں نے جگہ جگہ اپنی اس تفسیر میں اس کو قوسین میں بیان کر دیا ہے, اپنے قانون کے مطابق, اس لیے کہ اس سے غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ ارشاد ہوا کہ یہ خیال نہ کرو کہ یہ لوگ ہدایت پا لیں گے, اس لیے کہ ہدایت پانے کے لیے کچھ شرائط ہے. اس سے پیچھے اسی سورہ میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ شرائط کیا ہیں. آدمی جاننے کی سچی طلب رکھتا ہو. قرآن مجید نے یہ بیان کیا, لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, جاننے کی سچی طلب رکھتا ہو. اچھا, اب جب جاننے کے لیے سچی طلب کے ساتھ وہ رجوع کرے گا تو بات کہی جائے گی, تو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے کہ جو باتیں پہلے مانی جا رہی ہوتی ہیں ان کے مقابل میں جب کوئی بات آتی ہے تو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. بڑے سے بڑے شخص کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے, اچھے سے اچھے طالب علم کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس لیے سمجھنے کے لیے تیار ہونا, سمجھنے کے لیے تیار ہونے کا مطلب ہے اپنے تعصبات کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیجئے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ دوسرے کی بات درست ہو سکتی ہے, اس کی بات کو توجہ سے سننے کے لیے تیار ہو جائیے, اس کے محرکات تلاش کرنے کی بجائے اس کی دلیل پر غور کیجئے. تو یہ ہے سمجھنے کے لیے تیار ہونا, لے قومی یفقہون, اور پھر اتنا حوصلہ پیدا کیجئے کہ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو مان لیں گے, یعنی آگے بڑھ کے کہیں گے کہ سبحان اللہ, یہ بات تو واضح ہو گئی, مانے کیا ہے, رکاوٹ کیا ہے, ہم اس کو مانیں گے. تو یہ وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بات کون لوگ مانیں گے جو ان مراحل سے گزر کر اس کو پانے کی کوشش کریں گے, وہی مانیں گے. تو یہاں یہ ارشاد ہوا کہ یہ جب اس راستے ہی کو چھوڑ چکے ہیں, یعنی ان کا مسئلہ اس وقت کیا ہے, مخاطب کو شکست کیسے دینی ہے, اس کی بد کیسے اڑانی ہے, لوگوں میں اس کو رسوا کیسے کرنا ہے, اس کے بارے میں غلط فضا کیسے تیار کرنی ہے, کیا الزامات لگانے ہیں جس میں لوگ اس کی بات سننے سے انکار کرنا شروع کر دیں. جب ساری یہ اسکیم یہ ہے تو پھر کیا ہے, پھر ایسی باتیں کہی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دینا تھا تو ہمارے کسی بڑے کا انتخاب کر لیا ہوتا, ہمارے اکابر پر یہ حقیقت واضح کی ہوتی, کچھ بھی تردد نہ ہوتا, وہ کہتے ہم مانتے, جن کے سامنے پہلے سر جھکائے ہوئے ہیں یہ بات بھی مان لیتے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, انہی کی سمجھ میں آئی, اچھا انہی پر الہام ہوا, پہلی بات انہی پہلی بار انہی پہ واضح ہوئی, اور وہاں یہ کہ ہمارے اندر سے ایک عام سے آدمی کو, کوئی سردار نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, ہمارے زعماء میں سے نہیں ہے, انتخاب کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو انتخاب کیا انسانیت کے مظہر کمال انسانیت کے مظہر اتم کا, اللہ تعالیٰ نے تو انتخاب کیا اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے انسانیت کے گلے سرسبت کا, لیکن वो उसको अपने दुनियावी पैमानों से देख रहे हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि फिर ये मामला ऐसे क्यों नहीं हुआ, और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने हम में से हर एक तक पैगाम पहुंचा लिया होता। तो एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, यानी असल बात ज़ेर बहस ही नहीं, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं, इस्तदलाल ज़ेर बहस नहीं, ऐसी चीज़ें तलाश करें, देखें क्या मिलती हैं। कोई है पत्थर फेंकने के लिए तो उसको तलाश कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है, वो बात कहाँ से कही जा रही है, वो मौजू बहस नहीं। तो अल्लाह ताला का ये कानून जो है, इसको बार बार कुरान में इसलिए वाज़े किया गया कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, अपने कानून के मुताबिक जिसको हिदायत देना चाहते हैं, यानी वो हिदायत देने के लिए इंतखाब किसका करते हैं, जो इन शरायत पर पूरा उतरता है, ये उनका कानून है। मैंने लिखा है यानी अपने इस कानून के मुताबिक कि हिदायत वही पाएंगे जो हिदायत के सच्चे तालिब होंगे। हिदायत का सच्चा तालिब होना, वो तो तलाश करता फिरता है कि मुझे सही बात मालूम हो, जगह जगह हर दरवाजे पर दस्तक देता है, हर पत्थर को उलटता है कहीं रास्ता मिले। हिदायत का सच्चा तालिब, उसमें वो सारी चीज़ें आप से आप पैदा हो जाएंगी। सच्चा तालिब है तो जानना चाहेगा, और सच्चा तालिब है तो बात सामने आएगी तो समझना चाहेगा, और सच्चा तालिब है तो पाने के बाद उसको अपने दामन में क्यों नहीं लेगा, आगे बढ़ के लेगा। यानी अपने इस कानून के मुताबिक के हिदायत वही पाएंगे जो हिदायत के सच्चे तालिब होंगे, और जो हिदायत से गुरेजो फरार के रास्ते तलाश करने में ज़िंदगी बसर कर देंगे, वो लाजमन गुमराह कर दिए जाएंगे। ये अल्लाह का कानून है। तो इस कानून का मैंने हवाला दिया है इसलिए कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसको हिदायत देना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। इस्लाम अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह की नेमत है। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान अपने आप को दुनिया के हवाले किया होता है, अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उसको पैगाम पहुंचाया कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। इस्लाम का मतलब है हवाले कर देना, सपुर्द कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना, अल्लाह ताला की नज़र कर देना। तो ये इस्लाम की हकीकत है। ज़ाहिर है इस्लाम की इस हकीकत को वही पाता है जो इसका सच्चा तालिब होता है। तो फरमाया कि अल्लाह चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और उसी के दूसरे पहलू को बयान किया, वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यकन हरजन कअन्नमा यस्सअदु फिस्समा, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग कर देता और ऐसा भींचता है गोया उसे आसमान में चढ़ना पड़ रहा है। यानी उसके सामने इस्लाम आता है, उसकी दावत आती है, पैगंबर की बात आती है, तो मालूम होता है कि जैसे उसे किसी पहाड़ पर चढ़ने की मशक्क़त में डाल दिया गया है, ऐसी तंगी महसूस करता है। ये तंगी जिसकी यहाँ तस्वीर खींची है, यानी उसी तरह की तंगी कि जैसे किसी आदमी को बड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए, ये असल में उन रुकावटों का बयान है जो इंसान ने अपने अंदर छुपा रखी होती है। वही तअस्सुबात, वही मफादात, वही अनानियत, वही गलत इस्तदलाल और गलत बुनियादें, क्योंकि वो उसके अंदर उतर चुकी होती हैं तो वो फौरी तौर पर रद्द करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इरशाद हुआ कि कदालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, अल्लाह इसी तरह उन लोगों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। ये रिज्स, ये नापाकी क्या है? शिर्क, जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है। यानी यहाँ जो मुखातबीन हैं उन्होंने दीन शिर्क को इख्तियार कर रखा है, वो शिर्क ही में जी रहे हैं, शिर्की को उन्होंने अपने तमाम बिदात की बुनियाद बना रखा है। तो फरमाया कि ये शिर्क आसानी से नहीं आता, ये उस वक्त आता है जब अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत को इंसान बिगाड़ बैठता है, जो अल्लाह ने रोशनी उसके अंदर रखी है उसकी नाकदरी करता है, जो आवाज़ अंदर से आती है उसको सुनने से इनकार करता है, उसके अंदर अकल जैसी चीज़ है, चरागे राह है, राह दिखाती है, वो इस पर भी पर्दे डाल देता है और अपनी बाग, अपनी ख्वाहिशात, अपनी शहवात और बदरजा आखिर जुनून व अवहाम के हाथ में दे देता है। नतीजा क्या निकलता है? फिर शिर्क पैदा होता है, फिर बिदात दर आती हैं, फिर सही रास्ता गुम हो जाता है, फिर राह नहीं मिलती। और जब कोई राह दिखाने के लिए आ जाता है तो वही ख्वाहिशात, वही शहवात, वही जुनून व अहम रुकावट बन जाते हैं। और उधर से इस्तदलाल होता है, दलील होती है, दलील का जवाब मुमकिन नहीं होता, तो फिर इस तरह की बातें कही जाती हैं कि हमारी समझ में बात क्यों नहीं आई, और ये बात हम तक क्यों नहीं नाजिल की गई, और ये कुरान हमारे किसी बड़े पर क्यों नहीं आया, और हम में से हर एक को क्यों नहीं दे दिया गया। फिर ये चालें चलने की इंसान कोशिश करता है, तो गोया मुखातबीन की नफ्सियात का तज्जिया करके बता दिया कि अल्लाह ताला की हिदायत पानी है, तो ये रुकावटें दूर करो, अपने आप को दुरुस्त करो, सही मुकाम पर खड़े हो जाओ, और सही मुकाम वही कि हिदायत के सच्चे तालिब बन जाओ, ये बन जाओगे तो ये रास्ता तुम पर खुल जाएगा। अकूलो कौली हाजा वस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।